नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं शक्ति सिंह। मुख्य समाचार। भारत और इसराइल ने विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने ओडिशा में मध्यम दूरी की अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य को 60 दिनों के लिए फिर से खोलने पर सहमति बनी। बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव 20 अगस्त को होगा। यूक्रेन ने रूस पर हमले तेज किए, 2 तेल शोधन संयंत्रों पर निशाना बनाया। और भारत की 3 बैडमिंटन खिलाड़ी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर विचार विमर्श भी किया। भारत और सिंगापुर ने आज अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। ये समीक्षा नई दिल्ली में आयोजित भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श के 19वें दौर में की गई। बैठक में व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप में शामिल 8 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की स्थिति पर भी चर्चा हुई। नई दिल्ली में जारी 5वें भारत रूस सेना भूमि प्रणाली उप समूह की बैठक के दौरान दोनों देशों ने आपसी विश्वास बढ़ाने और रक्षा औद्योगिक तथा तकनीकी सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य तकनीक सहयोग आयोग के तत्वाधान में आयोजित इस 4 दिवसीय बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और मजबूत करना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह DCOAS CD&S ने किया। रूस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय के मुख्य बख्तरबंद निदेशालय के उपप्रमुख मेजर जनरल तुफेकची अलेक्जेंडर ने किया। पिछले महीने नई दिल्ली में आतंकवाद रोधी मामलों पर भारत रूस संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद का मुकाबला करने के अपने अनुभवों को साझा किया और हिंसक उग्रवाद कट्टरता तथा आतंकवाद वित्त पोषण की चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन सहित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के पास इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मानदंडों की पुष्टि हुई। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो रहे हैं।
ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं।
2 दिन का ब्रिक्स वेव बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि बाजार का उद्देश्य फिल्म, टेलीविजन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग, संगीत, डिजिटल मीडिया और उभरते कंटेंट फॉर्मेट में सहयोग का मार्ग तैयार करना है।
सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, AI मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। ईशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य 60 दिनों के लिए फिर से खोलने पर सहमति बन गई है। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से समझौते को मंजूरी मिलनी बाकी है। एक रिपोर्ट।
समझौते के अनुसार जलडमरू मध्य में प्रवेश करने वाले जहाज ईरान के निकटवर्तीय मार्ग का उपयोग करेंगे, जबकि बाहर निकलने वाले जहाज ओमान के निकटवर्तीय मार्ग का उपयोग करेंगे। कोई पारगमन शुल्क या सेवा शुल्क नहीं लगाया जाएगा और क्षेत्रीय पक्ष समुद्र में बारूदी सुरंगों को हटाने और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं में शामिल हो सकते हैं। समझौते को मंजूरी मिलने के बाद अमरीका और ईरान अपने शांति समझौता ज्ञापन के अनुसार जलडमरू मध्य फिर से खोलने और वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही का प्रस्ताव तैयार करेंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
इसराइल की सेना ने कहा है कि दक्षिणी लेबनान में एक अभियान के दौरान हुए विस्फोट में उसके 2 सैनिक मारे गए और 4 अन्य घायल हैं। विस्फोट के कारणों की जांच जारी है। इसराइली सेना ने शुरुआत में उसे हिजबुल्ला की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन बताया और दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले किए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दक्षिणी शहर तिबनिन पर इसराइली हवाई हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 12 अन्य लोग घायल हैं। यूक्रेन ने रूस के तेल भंडार को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमले किए हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि सेना ने रूस के बशकोर्तस्कान और यारकोस्ट क्षेत्र में तेल रिफाइनरियों पर हमला किया। एक रिपोर्ट।
हमले के बाद यारोस्लाव शहर के ऊपर घना काला धुआं देखा गया। प्रांतीय गवर्नर ने इस क्षेत्र पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। नष्ट किए गए ड्रोन के गिरे मलबे से तेल भंडारण टैंक क्षतिग्रस्त हो गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि वायु रक्षा प्रणाली ने यूक्रेन के 605 ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि हमलों में 3 लोग मारे गए। इस बीच यूक्रेन पर रूस के हमले भी जारी हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि हमलों में 6 लोगों की मौत हुई है। विश्व दर्पण के लिए मैं जया भारती।
बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद का चुनाव इस महीने की 20 तारीख को होगा। बांग्लादेश के निर्वाचन आयोग ने आज इसकी घोषणा की। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार उम्मीदवार 13 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जाँच 16 अगस्त को होगी, जबकि उम्मीदवार 18 अगस्त तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। राष्ट्रपति चुनाव की आवश्यकता मोहम्मद शहाबुद्दीन के 24 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद पड़ी थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकार को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। 27 जुलाई को POJK में तथाकथित विधायी चुनावों से पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़पें हुई। संयुक्त आवामी कार्रवाई समिति ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। ब्रसेल्स स्थित EU रिपोर्टर्स की रिपोर्ट में कहा गया कि मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं में लगातार बंद रहने से पत्रकारों और मानवाधिकार समूहों के लिए जमीनी स्थिति का आकलन करना मुश्किल हो गया है। खेलों में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चहला और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी अंतिम 8 में पहुंच गई है। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी विलिशेट्टी को हराया, वहीं अश्मिता ने मेजबान कोरिया की किम मिनजी को और रक्षिता ने जापान की मनामी सुइजू को पराजित किया। पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की जोड़ी को पराजित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इसराइल ने विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने ओडिशा में मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य को 60 दिनों के लिए फिर से खोलने पर सहमति बनी। बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव 20 अगस्त को होंगे। यूक्रेन ने रूस पर हमले तेज किए, 2 तेल शोधन संयंत्रों को निशाना बनाया और भारत की 3 बैडमिंटन खिलाड़ी कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।